ஓம் சாந்தி. ஹம் சப் பாபா கே தீவிர புருஷார்த்தி பச்சே, பகுத் லகன் சே ஈஸ்வரிய படாய் பட ரே ஹே. ஓர் ஹம் சப் பாபா சே ஓர் ஸ்வயம் பி அப்னே ஆப் சே அப்னே ஆப் கோ பகுத் ஊச்சா மெடல் தே சக்தே ஹே. க்யோங்கி உஸ் சேனா மே தோ தூசரே லோக் மெடல்ஸ் தேதே ஹே, ஓர் ஜித்னே மெடல்ஸ் மில்தே ஹே உத்னா உஸ்கோ படி பதவி பர் மானா ஜாதா ஹே. இஸ் ப்ராஹ்மண ஜீவன் மே ஹமே கோய் மெடல் தேதா நஹீ, ஹமே குத் கோ ஹீ குத் மெடல் தேனா படதா ஹே. ஓர் வோ மெடல் ஹமாரி ஸ்ரேஷ்ட ஸ்திதி ஹே. மே சமஜ்தா ஹூ ஹரேக் கே ஜீவன் கா ஏக் லக்ஷ ஹோகா கி முஜே அப்னி ஸ்திதி பஹுத் ஸ்ரேஷ்ட ஊஞ்சே சே ஊஞ்சி பனானி ஹே. ஜின்கி ஸ்ரேஷ்ட ஸ்திதியா ஹே, ஜின்ஹோனே பனாயி ஹே, உன்கி பஹுத் சி நிஷானியா ஹம் சப் சுன்தே ஔர் ஜான்தே ஹே, தேக்தே ஹே. கைசி பி பாத்தே கைசி பி பரிஸ்தித்தியா ஆ ஜாயே, चाहे व्यक्तियों के द्वारा चाहे प्रकृति के द्वारा, हर परिस्थिति को बहुत सहज रीति से एक रस स्थिति के आधार से पार कर लेते हैं. बहुत जल्दी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते, टेंशन में भी नहीं आते, उतावले भी नहीं होते और उत्तेजित भी नहीं होते. ஸ்ரேஷ்ட ஸ்திதி வாலோக்கோ ஆப் தேகேங்கே கி கைசி பி பாத்தே ஆத்தி ஹே, பகுத் சரலதா கே சாத் முஸ்கராதே ஹுயே உஸ் பாத் கோ பார் கர் லேதே ஹே. ஔர் சமய அனுசார் பாபா ஹம் சப் பச்சோ சே யே ஆஸ் ரக்தே ஹே கி மேரே சபி பச்சோ கி ஸ்திதி பகுத் ஊஞ்சே சே ஊஞ்சி ஸ்ரேஷ்ட ஹோ. और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए ही हम सब समय प्रति समय भट्टियां योग तपस्या के कार्यक्रम करते हैं, मधुबन में भाग भाग करके आते हैं, बाबा के महावाक्य ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं. जो भी हमारे पुरुषार्थ की विधियां बनाई गई हैं उन सब विधियों के पीछे एक ही लक्ष्य है कि हमारी स्थिति श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंची बने. हम सब जानते हैं समय अनुसार इस कलयुग की अंतिम घड़ियों में हर आत्मा अपने अपने हिसाब किताब भी जहां से भी बने हैं वो सब चुकतू कर रही है. और वो जब कई बार हमारे सामने अचानक हिसाब किताब आता है तो कई बाबा के बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें अपना सही लक्ष्य दिखाई नहीं देता, उनके आगे अपना भविष्य भी स्पष्ट नहीं होता. लेकिन अगर उन्होंने पहले से अपनी स्थिति बहुत ऊंची बनाई है, श्रेष्ठ बनाई है, ये मेडल उनके पास है, कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्थिति को बिगाड़ने नहीं दूंगा, बहुत अचल अडोल एक रस रहते हैं और परिस्थितियां आती हैं उनको बड़ी सहज रीति से क्रॉस कर जाते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, परेशान नहीं होते और अधिक चिंतन भी नहीं करते, वर्णन भी नहीं करते, बात आई है खत्म हो जाएगी. लेकिन कईयों के सामने कोई छोटी सी बात आती है उसको सोच सोच करके वो इतना बड़ा बना देते हैं जो उनके लिए वो पहाड़ हो जाती है. सोचते हैं फिर दूसरों को अगर सुना देते हैं तो वायुमंडल में वो बात चली जाती है तो लगता है पता नहीं अब क्या होगा, ऐसी कई बातें हर एक पुरुषार्थी के सामने चलते चलते आती हैं, और अगर वो उन्हें सहज पार करना चाहता है, लक्ष्य रखता है, तो आज मैं आपको ऐसी कुछ विधियां बताऊंगा जो आप बहुत सहज रीति से हर बात को क्रॉस कर सकते हैं। बताई हुई तो बाबा की है, बाबा की बातें मैं सुनाता हूं और सुनाऊंगा आज, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो स्थिति बिगड़ती क्यों है और स्थिति श्रेष्ठ कैसे रह सकती है, वो दोनों हल आपको दिखाई देंगे। क्योंकि स्थिति का आधार हमारी स्मृति है। जिस प्रकार का हमारा अंदर का याददाश्त है, स्मृति है, चिंतन है, उसी आधार से हमारी स्थिति बनती जाती है। और वो स्मृतियां जो बाबा ने हमें दिलाई हैं, वो बहुत ऊंची हैं, बहुत महान हैं। जो बच्चे उस पर मनन चिंतन करते हैं, उसके सुमिरण में रहते हैं, उनकी स्थिति अपने आप नेचुरल एक रस बन जाती है। ऐसी स्थिति के लिए सबसे पहली एक बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है, बाबा ने हम सबको ध्यान खिंचवाया है, बच्चे बीती को चितवो नहीं। जो बीत गई बातें, उसको वैसे भी हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और भूत अगर याद भी आए तो डर लगता है, इसलिए भूतकाल बीती हुई बातों का चिंतन बार बार नहीं करना। कोई भी ऐसे कारण बने हैं, देह अभिमान के कारण, किसी हिसाब किताब के कारण, किसी भी परिस्थिति के कारण कोई अगर गलतियां हुई हैं, कुछ हो गया है, तो बार बार उसको अंदर ही अंदर सोच सोच करके अपने आप को परेशान नहीं करो। सेकंड में उसको फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो बीती से। और बाबा कहते हैं शिक्षा लेकर के, अनुभवी बन करके आगे बढ़ जाओ, उसका चिंतन करके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करो। तो सबसे पहली ध्यान देने वाली बात है, क्या मैं अपने बीतती हुई घटनाओं को एक सेकंड में ब्रेक दे करके अपनी अच्छी स्थिति में स्थित हो सकता हूं। ड्रामा का ज्ञान इतना हमने यथार्थ रीति से समझा है, ये नथिंग न्यू, हर बात में कुछ न कुछ रहस्य है, कुछ न कुछ कल्याण भरा हुआ है। इस स्मृति के आधार से उसमें भी हमें कुछ सिखा करके वो बातें गई, अनुभवी बना करके गई, इसलिए उन बीती हुई घटनाओं से, बीती हुई बातों से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। फुल स्टॉप। एक सेकंड में जो ब्रेक लगाना जानता है, उसकी स्थिति अपने आप अच्छे से अच्छी बन जाती है। दूसरी बात एक अंडरलाइन है, बाबा कहते हैं समय अनुसार हर आत्मा अपने अपने हिसाब किताब चुकतू कर रही है, और एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। किसी के पार्ट से भेंट करके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। इसका बड़ा अच्छा पार्ट है, अपने आप को देशिकस्त कर देते, या कभी भी किसी का ऐसा नेगेटिव पार्ट देख करके क्वेश्चन उठाते, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। और जब हम क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझ जाते हैं, तो स्थिति अपने आप डाउन हो जाती है, बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर सीट दी है, साक्षी दृष्टा स्थिति की। खुद के पार्ट को भी बड़ा साक्षी होकर के देखो, अपने आए हुए हिसाब किताब को भी साक्षी दृष्टा बन करके देखो, और अगर कोई बहुत स्नेही समीप की आत्मा, उसके प्रति भी बहुत साक्षी दृष्टा बन करके शुभ भावना का दान दो। ज्यादा उसके दुखों में दुखी नहीं हो जाओ, उसकी खुशी में खुशी नहीं हो जाओ। अगर साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का आपने अभ्यास किया है, तो हम स्थिति को अपना एक रस रख सकते हैं। नहीं तो कोई के स्नेही के पार्ट में स्नेही आत्माएं जो बहुत सहयोगी हैं, समीप रही हैं, उनके सामने कोई ऐसी घटनाएं आती हैं, तो हमें बहुत चिंतन चलता और उसके दुख सहन नहीं होते, और उसके दुख में हम खुद भी परेशान होके अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझना कि बाबा ने हम सबको हर परिस्थिति को साक्षी दृष्टा की स्थिति से देखने का बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, समझ दी है। तो साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाले की स्थिति अपने आप श्रेष्ठ हो जाती है, ऊंची हो जाती है, और ऊंचाई से वो हर दृश्य को ऐसे देखता है, ये तो बात आई है खत्म हो जाएगी। जैसे आप सब जानते हो, जब हम ऊंचाई पर चले जाते हैं तो ऊंचाई से जो नीचे की चीजें हैं वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। अब प्लेन से उड़ने वाले जब नीचे देखते हैं तो क्या दिखता है, बड़े बड़े शहर भी इतने छोटे से दिखते हैं, बड़े झाड़, बड़ी गाड़ियां, बड़े तालाब, बड़ी नदियां क्या दिखती हैं, वो छोटी चिट्टी जितनी छोटी छोटी है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जब आप इस साक्षी दृष्टा की स्थिति में, ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो ये सब बातें जो भी आई हैं पेपर बन करके बहुत छोटी अनुभव होंगी, ये तो खेल के रूप में आई हैं, खत्म हो जाएंगी। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति का बहुत अच्छा अभ्यास हमें ये मेडल सहज दिला सकता है, श्रेष्ठ स्थिति का। तीसरी बात, बाबा ने हम सबको श्रेष्ठ मत दी है, श्रीमत, और कहा भी जाता है श्रीमत सिर माथे। जो कुछ बाबा की श्रेष्ठ मत हमें मिली है, मुरली के द्वारा मिल रही है, हम सब उस श्रीमत पर ही कदम कदम चलते हैं। श्रीमत का हाथ, यही बाबा का साथ है। जो श्रीमत का हाथ लेकर के साथ चलते हैं बाबा के, उनकी स्थिति अपने आप अच्छी हो जाती। स्थिति बिगड़ने का एक मूल कारण है मन मत और परमत। कई आत्माएं हमारे साथ जो रहती हैं, जिनके संग हम उठते हैं, बैठते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, अगर उनके कमजोर संकल्प हैं, कमजोरियां उनके अंदर चिंतन में रहती हैं, तो उनके संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये बात बहुत अच्छी तरह से अपने आप से कहते हैं गांठ बांध लेनी चाहिए कि मुझे किसी कमजोर का संग नहीं करना है। अगर किसी कमजोर आत्मा के संग में उठना, बैठना, चलना है तो उसका संग का रंग कभी भी आपको कमजोर बना देगा। वो अपनी मन के, अपनी मत का प्रभाव आपके ऊपर भी डाल सकता है। इसलिए बाबा कई बार ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे संग की बड़ी संभाल करो, संग तारे कुसंग डुबोए। आप कहेंगे ब्राह्मणों का संग तो अच्छा है। मैं एक अपने बचपन की बात सुनाता हूँ। मैं जब मधुबन में आया तो बाई स्कूल के संग से तो मैं बच के आया था, वहां का संग तो ऐसा ही था बच्चों का, स्कूल का, और मधुबन में आया तो दीदी का ध्यान बहुत रहता था एक एक पर, दीदी मनमोहिनी का। तो दीदी ने मुझे अकेले में बुलाया और कहती है, संग की संभाल रखना। तो मैं दीदी की तरफ देखता रहा कि हमने दीदी, वो जो संग था बच्चों का, स्कूल का, लड़कों का, वो तो मैं छोड़ के आ गया, और मधुबन में आया और यहां पर भी मुझे यही डायरेक्शन मिला, संग की संभाल रखनी। यहां क्या खराब संग है क्या? तो जब क्वेश्चन उठता है तो जवाब भी आता है सामने से। तो दीदी ने बड़े प्यार से कहा, संग खराब नहीं है, यहाँ अच्छा संग है सबका, लेकिन अगर कोई का अपनी उन्नति के प्रति ख्याल नहीं चल रहा है, अगर वो बाबा की श्रीमत का संपूर्ण पालन करके नहीं चलता, केवल सेवा किया, खाना खाया, सोया, ऐसे व्यक्ति के संग से अपने को बचाना, क्योंकि उसको अपनी स्व उन्नति के लिए अपने स्वचिंतन का ध्यान ही नहीं है। वो अमृत वेला नहीं करता है, वो मुरली क्लास नहीं करता है, वो अलबेला रहता है, टाइम पर क्लास में नहीं आता है, सोया रहता है, और ऐसे संग में आप रहोगे तो धीरे धीरे उसका रंग लग जाएगा। इसलिए ब्राह्मण जीवन में भी हम सबको संग की बहुत संभाल करनी है, नहीं तो कोई भी ऐसे कमजोर संग बाबा की मुरली में अपनी बातें ऐड करके सुनाने वाले, कई प्रकार की बातें देने वाले कि बाबा तो कहता है अभी कौन बना है, पास तो आठ ही होने वाले हैं, 108 ही होने वाले हैं, फिर हम क्यों इतनी मेहनत करें, क्या जरूरत है। जैसा कमजोर कोई होगा उसके संग वाले का रंग आपको भी डाल देगा। इसलिए बहुत ध्यान देना, मन मत और पर मत के प्रभाव से बच के रहना, अगर अपनी स्थिति अच्छी बनानी है, श्रेष्ठ स्थिति का मेडल लेना है तो। चौथी बात है, हमारे इस विद्यालय का, हमारी इस पढ़ाई का फाउंडेशन क्या है? मन वचन और कर्म की पवित्रता, शुद्धता। जहां स्थितियां हिलती हैं उसका एक मूल कारण दिखाई देता है, जब कहीं किसी के प्रभाव में आत्मा आती है, किसी के नाम रूप की तरफ आकर्षित हो जाती है, जब उसकी वृत्तियां दैहिक और देहाभिमान वाली बन जाती, इम्प्योरिटी हमारी स्थिति को बहुत जल्दी नीचे गिराती है। और जितना इस ब्राह्मण जीवन में हमने इस संकल्प में दृढ़ता लाई कि कुछ भी हो जाए मैं अपने संकल्पों को कभी भी विकारी पतित नहीं बनने दूंगा, मन से भी पवित्र रहूंगा, वचन से भी रहूंगा और कर्म में तो सदा पवित्रता को धारण करूंगा। जो आत्माएं इस व्रत को दृढ़ता के साथ पालन करती हैं उनकी स्थिति बहुत अचल अडोल एक रस रह जाती होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं पवित्रता सुख और शांति की जननी है, माँ है। अगर सुख और शांति चाहिए, श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, तो हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपने संकल्पों की प्योरिटी पर बहुत ध्यान दें, मनसा पर ध्यान दें, इसके अंदर व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प भी इम्प्योरिटी है। व्यर्थ से अपने आप को बचाने का प्रयास करो। क्या प्रयास है? आप कहेंगे क्या करें तो हमारे व्यर्थ ना आए। व्यर्थ तो सबको आता होगा, कोई ऐसा नहीं कहेगा मुझे व्यर्थ संकल्प ही नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प चलते चलते वो एक नेगेटिव रूप लेकर के हमारे से कोई गलत कर्म करा दें तो बाबा कहता है बीज को ही खत्म कर दो। बीज संकल्प है, बोल और कर्म उसका प्रतिफल है। अगर बीज संकल्प ही अच्छे हो गए, पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, तो न बोल कभी गलत होंगे न कर्म गलत होंगे। इसलिए ध्यान देना, अपनी मनसा पवित्रता को कायम रखने के लिए, व्यर्थ से बचने के लिए हम सबको समर्थ चिंतन, मुरली का चिंतन, अच्छे अच्छे सम्मान का चिंतन करना चाहिए। मन को काम चाहिए, कोई भी घड़ी ऐसी नहीं होती जो हम कहें हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, हर पल आत्मा कुछ न कुछ सोचती ही है। लेकिन कईयों का उस सोचने पर ध्यान नहीं होता, सोचते रहते हैं बस, विचार चलते जाते हैं। कई बार तो नींद में भी विचार चलते हैं तो कहते हैं नहीं नींद नहीं आई मुझे। तो इसलिए ध्यान देना, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को जीतने के लिए हम सबको बहुत अच्छे ज्ञान का, सम्मान का चिंतन करना है, उसी में रमण करना है, मनन करना है। जो आत्माएं इसमें लगी रहती है उनकी मनसा बड़ी प्योर, शुद्ध, पवित्र हो जाती है और बोल और कर्म तो अपने आप हो जाते हैं। तो हमारी श्रेष्ठ स्थिति का फाउंडेशन प्योरिटी है, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जरा भी कोई इम्प्योर संकल्प ना आए। अगर कोई पास्ट के संस्कारों के कारण, कोई ऐसे हिसाब किताब के कारण आते भी हैं तो ज्यादा परवाह नहीं करो, डोंट केयर करो। डोंट केयर, आया और गया, उसको चेंज करो, मोल्ड कर दो, स्थान चेंज कर दो, जो पढ़ रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं उसको चेंज कर दो, तो आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, पवित्रता का फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा और जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतनी स्मृति एक रस बनेगी बाबा के साथ, लिंक जुट जाएगी और स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। वर्तमान समय स्थिति बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण दिखाई देता है। आप सब जानते हो सेवाओं का विस्तार, सेवाएं बढ़ रही हैं और विस्तार के अंदर जब तेरे और मेरे की भावना आती है, एरिया की बातें आती हैं, बहुत सारी डिस्टर्बेंस पैदा होती है। ज्ञानी और योगी के लक्षण भी कहीं कहीं गायब हो जाते हैं। दूसरों को बड़े ऊंचे ज्ञान की बातें सुनाते हैं, लेकिन आपस में ही टकराव की स्थिति पैदा करके, मन मुटाव करके दूरी बढ़ जाती। सबकी स्थितियां आजकल माया इस रूप में बिगाड़ रही है। अंडरलाइन करना, सेवाएं बाबा की हैं, करण करावन हार करा रहा है। अधिक सेवाओं के पीछे अपनी स्थिति को बिगाड़ो नहीं। पहले स्थिति है, बाद में सेवाएं हैं। अगर स्थिति बिगड़ रही है तो सेवाओं से भले किनारा कर लो। बाबा नहीं कहता है कि सेवाओं का इतना विस्तार कर लो जो उसे विस्तार के अंदर मकड़ी की जाल की तरह, मकड़ी की तरह फंस करके चले जाओ। बाबा कराएगा जो करना है। हम सबको बाबा ने अपनी स्थिति बनाने के लिए ये सब साधन दिए हैं। सेवाएं भी हमारे स्थिति बनाने के लिए हैं, न कि बिगाड़ने के लिए। इसलिए हर एक को अंडरलाइन करना है, सेवाओं के बीच में एक रिकॉर्ड बना के दिखाना। अंडरलाइन करना सभी, हमारी बहनें भी। वो है रिगार्ड देने का रिकॉर्ड। अगर सचमुच दिल से एक दूसरे को रिगार्ड दिया जाए, केवल इच्छा नहीं रखो ये मुझे सम्मान दे, ये मेरे से प्यार से बात करे, लेकिन दूसरों से हम अपेक्षाएं रखते हैं, कभी हम भी पूछ लें कि हम भी वैसे ही प्यार देते हैं, हम भी वैसे ही रिगार्ड से बात करते हैं। बाबा कई बार कहते हैं मान सम्मान मांगने से नहीं मिलता, देने से मिलता है। तो हर ब्राह्मण आत्मा अगर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहती है तो अंडरलाइन करना कि मुझे सबको बड़े सच्चे मन से, सच्चे दिल से रिगार्ड देना है। सम्मान देंगे, प्यार देंगे, स्नेह देंगे तो अपने आप रिटर्न में वही मिलेगा। एक सिंधी में कहावत है, मिठरा घुरत घुराए। तो मीठे बोल बोलोगे तो सब तुम्हारे से भी मीठा व्यवहार करेंगे। अगर जरा भी आप कड़वे होगे और अपेक्षा रखोगे सब मुझसे अच्छा बोले, तो कभी भी आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे बाबा के इस ताबीज को, मंत्र को बांध करके अपने साथ रखें कि मुझे सबको रिगार्ड देना है। ये रिकॉर्ड हमारा खराब न हो। कईयों की भाषा ऐसी होती है, फोन पर बोल देते हैं, आपस में बोल देते हैं, जैसे बाबा कई बार कहते हैं किसी को काट लेते हैं। देखना, ध्यान देना, भाषा में कभी भी कोई भी आत्मा अपसेट न हो जाए। हम दूसरों को अपसेट करने के लिए नहीं आए हैं। हम अपनी स्थिति को सेट करें और फिर दूसरों से बात करें। सेट होकर के बात करें, अपसेट होकर के नहीं। अगर ये ध्यान रखेंगे तो स्थिति एक रस बन जाएगी। इसके लिए अच्छे अच्छे सम्मान में रहने का अभ्यास करो, कोई मान दे या न दे। बाबा तो चाहते हैं ये मेरे योगी बच्चे हैं, तपस्वी बच्चे हैं, दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में समान स्थिति बनाए, संतुलन बनाए। कोई ने महिमा कर दी बड़ा अच्छा है, कोई ने कुछ इधर उधर कटाक्ष कर दिया, उसे नफरत कर लिया, उसे दूरी बढ़ा ली, उसने मेरी एक गिलानी की मैंने उसकी 10 बातें सुना दी, ये अच्छे स्थिति की निशानियां नहीं है। अच्छे स्थिति वाले जैसे ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने सबकी बातें सुनी, चाहे परिवार ने गिलानी की चाहे बाहर वाले ने की, बच्चे सब निर्दोष है, इनका कोई दोष नहीं है। कभी भी उनको ये नहीं कहा कि इसने एक किया है तो मैं इसकी 10 ग्लानी कर दूं, 10 जगह उसकी बातें फैला दूं। समाया, क्षमा किया, बहुत बड़े दिल से कहा ये निर्दोष है। इसलिए ध्यान देना, बाबा ने हम सबको बड़े ऊंचे सम्मान दिलाए हैं, सम्मान स्मृति में दिलाए हैं, स्वयं स्वयं को मान दो, बहुत रूहानी नशे और कुमारी में रहो। बाबा ने इतना ऊंची चोटी पर बिठाया है कि मेरा एक एक ब्राह्मण बच्चा मेरे सिर का ताज है, सिरताज है, मेरे ब्राह्मण कुल की शोभा है, ये श्रृंगार है। हम सब बाबा के ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे हैं, हम अपने ऊंचे बहुत ऊंचे सम्मान में स्थित रहें और सबको सम्मान देते चले, किसी से मांगे नहीं, तभी हमारी स्थिति एकरस और श्रेष्ठ बन सकती है। मैं एक सातवीं बात आपको सामने रखता हूं। मेरे सामने एक प्रश्न आया था, निमित्त किसको कहा जाता है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, कोई बात आती है निमित्त को सुना दो, हल्के हो जाओ। तो कई स्टूडेंट्स प्रश्न करते हैं कि हमारी टीचर ही हमारी निमित्त है, उसके अंदर तो ये है, उसके अंदर ये है, निमित्त की परिभाषा क्या है। हम सब जानते हैं कोई भी जवाबदारी जब किसी को दी जाती है तो जो मुखिया होता है उसको निमित्त कहा जाता है, जो भी बड़ा होता है, सेवा केंद्र है, सेवा केंद्र की इंचार्ज बहन है, उसके अंडर में उप सेवा केंद्र है, गीता पाठशालाएं हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो उन सब के लिए तो वही बहन, बड़ी बहन निमित्त है। लेकिन बाबा ने हमारी दादियों को निमित्त बनाया साकार में, और वर्तमान समय जितने सेवा केंद्र चल रहे हैं जोन के निमित्त हैं, सब जोन के निमित्त हैं, सेवा केंद्रों के निमित्त हैं जो बड़े हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो निमित्त है वो निर्माण है। निमित्त और निर्माणपन का भाव, जहां निमित्त भाव आता है वहां मैंपन समाप्त हो जाता है। ऐसे नहीं मैं बड़ा हूं, मैं जवाबदार हूं, मैं जो कहूं वही राइट है। बाबा कहता है निमित्त का अर्थ ही है करावनहार कोई दूसरा है, तुम निमित्त हो। जवाबदार हम सब का मालिक एक है और हम सबको उसने निमित्त बनाया है। निमित्त का अहंकार ना आ जाए इस पर बहुत ध्यान देना, बहुत निर्माणचित होकर के सबको यथार्थ मार्गदर्शन दिया जाए श्रीमत के अनुसार, उसको ही निमित्त कहा जाता है। अगर निमित्त आत्माएं किसी की बात को समा नहीं सकती, फैला देती हैं, तो उनको वास्तव में निमित्त नहीं कहा जाता। निमित्त के अंदर समाने की, सहन करने की, सही मार्गदर्शन देने की शक्ति होती है। तो हम सब बाबा हमारे लिए निमित्त हैं, निमित्त हमारी दादियां हैं, और अगर कोई आत्माएं बहुत वफादारी से बात सुनती हैं, समाती हैं, सही मार्गदर्शन देती हैं, बहुत निरहंकारी होकर के रहती हैं, तो हम उनको बात देते हैं, नहीं तो हम एक बाबा को ही सुनाते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे अपनी स्थिति को एक रस रखने के लिए ध्यान दें कि हम सदा कोई भी कार्य के निमित्त हैं, कराने वाला करा रहा है, और बहुत निर्माण चित स्थिति में स्थित रहें। स्थिति को एक रस का आसन चाहिए और उसके लिए बहुत बैलेंस चाहिए। जहां बैलेंस टूटता है वहां स्थिति नीचे ऊपर हो जाती है। तराजू बैलेंस की निशानी है, उसके बीच में कांटा होता है। अगर कांटा स्थिर हो गया, तराजू के दोनों समान हो गए पलड़े, तो कहते हैं बैलेंस अच्छा है, ठीक है। हम सभी भी हर बात का बैलेंस बना करके रखें। सबसे पहला बैलेंस है, बाबा एक बात अंडरलाइन कराते हैं कि अति, कोई भी चीज की अति सदा नुकसान करती है। अति में कहीं नहीं जाना, अति प्यारे बन गए तो भी नुकसान हो जाएगा, और अति न्यारे बन गए तो भी सब किनारे कर लेंगे। इसलिए सबसे अच्छा बैलेंस जो बाबा का बैलेंस है वो है न्यारे और प्यारेपन का। हम सब बाबा के बच्चे बहुत एक दूसरे के स्नेही हैं, प्यार है, लेकिन कोई विशेष प्यार न करे किसी से। अगर किसी से विशेष प्यार हो गया, उसी को सब बातें सुनाई जाती, उसी से लेन देन की जाती, तो वो प्यार बंधन का रूप बन जाता है, और वो प्यार एक न एक दिन स्थिति को बिगाड़ने के निमित्त बनता है। इस बात को हर एक को अंडरलाइन करना है कि किसी देहधारी से स्पेशल प्यार रख करके उसी के साथ दिल की बातें करना, उसी के साथ बैठना, उसी के साथ लेन देन करना और सबसे छिपा लेना, वास्तव में ये कर्म बंधन की रस्सियां बना रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को बहुत सुंदर बैलेंस की जीवन दी है, जहां न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है। कार्य के लिए हम सब एक हैं, परिवार है हम सबका, समय पर साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, मदद करते हैं और फिर न्यारे हो जाते हैं। बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे देह अभिमान से न्यारे बनो और बाबा के प्यारे बनो। जो देह अभिमान से न्यारे और बाबा के प्यारे हैं वो सबके प्यारे हो जाते हैं। एक बड़ी अच्छी मुरली बाबा की चली है, आप सब सुनेंगे अव्यक्त बाबा की, कि बच्चे जो बीज को प्यार करना जानते हैं वो पूरा वृक्ष उनको प्यार करने लगता है। बीज कौन है? बाबा है। अगर सचमुच सब पूरे ब्राह्मण परिवार से प्यार लेना है तो बीज को याद करो, बीज को प्यार करो, बस वृक्ष अपना हो जाएगा और बीज हमारा बाबा है। इसलिए ध्यान देना, बैलेंस बहुत बड़ी कला है और जो बैलेंस से चलता है उसकी लाइफ ब्लेसफुल ब्लिसफुल हो जाती है। बहुत कुछ ब्लिस मिलती है बाबा की परिवार की और ब्लिसफुल लाइफ के साथ एकदम आनंदमय जीवन, ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, ब्लिसफुल भी बन जाते हैं। इसलिए जरूरत है, न्यारे प्यारे का बैलेंस है, सेवा और स्थिति का बैलेंस है, गंभीरता और मिलनसार का बैलेंस है, एकांत और रमणीकता का बैलेंस है। ऐसे नहीं एकांत में चले गए, सूखे सूखे हो गए, मिलना ही बंद कर दिया किसी से। बाबा कहता है ये सूखा ज्ञान नहीं है, एकांत में रहो लेकिन सबके साथ मिलजुल करके चलो। एक की याद के अंत में रहना, एकांत माना ऐसे नहीं जंगल में चले जाएंगे, किनारा कर लेंगे, परिवार छोड़ देंगे, लेकिन बाबा की याद में खो जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं और सबके साथ मिल करके चलते हैं। गंभीर हैं ऐसे नहीं गंभीर हैं जो दिखाई दे पता नहीं भाई बड़ा सीरियस है, गंभीरता कभी कभी सीरियस का रूप बना देती है, ऐसे सीरियस नहीं बनना, उसमें रमणीकता समाई हुई है, मिलनसारता समाई हुई है। तो हम सब बाबा के बच्चे बैलेंस को जितना अपना के चलते हैं उतना बड़ी अच्छी स्थिति बन जाती है, कहीं भी स्थिति डगमग नहीं होती। कई अति मान लो योग करने लगे, कहेंगे नहीं बाबा ने कहा योग ही करो, और बैठ जाए तपस्या में, कब तक योग करेंगे, कितना समय बैठेंगे, कितना समय मन को एकाग्र कर पाएंगे। कर्म और योग का बैलेंस है, धर्म और कर्म का बैलेंस है। अगर धारणाएं हमारे जीवन के अंदर अच्छी हैं तो हम कर्म योगी जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए बैलेंस को हम सब ध्यान पर रख करके अपनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं। तो सभी ध्यान देना, श्रेष्ठ स्थिति हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के जीवन का मेडल है, ये रूहानी सेना का मेडल है और ये मेडल हमें खुद को खुद ही देना है, दूसरा कोई नहीं देगा। अगर कोई की स्थिति अपसेट हो गया तो कोई पूछेगा नहीं, बड़े रहो भले अकेले। अपनी स्थिति बनाने के लिए हमें खुद समय देना है, अपनी खुशनुमा स्थिति में, अच्छी स्थिति में रहने के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग करो, मन को अच्छा अच्छा होमवर्क दो। इतना सारा बाबा ने हम सबको होमवर्क दिए हैं, अगर उसको रिवाइज करो, मन को बिजी कर लो, कभी भी उदासी, निराशा, हताशा, गमगीनी, दिल शिकस्ती, ये जो बाबा के शब्द हैं, कभी भी नहीं आएगी। बड़ी खुशनुमा जीवन है, खुश नसीब है हम सब बाबा के बच्चे जो भगवान की पालना, उनकी छत्र छाया, तीन छत्री हम सबको मिली हुई है, एक नहीं है, हम सब ब्राह्मण बच्चों के ऊपर तीन छत्रियां हैं। लेकिन कभी कभी वो छत्रियां उलट जाती हैं, जैसे तूफान आता है ना, तो छत्री अगर कमजोर होती है तो क्या होता है, पलट जाती है। तो बाबा भी कहता है अगर तिलियां मजबूत नहीं है तो छत्री पलट जाएगी। सबसे बड़ी अच्छी छत्री है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की, पॉजिटिव संकल्प, जो होगा अच्छे अच्छा होने वाला है, कुछ गलत नहीं होगा। अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करो, अच्छे संकल्पों का उरा आभा मंडल बना लो और उसमें अंदर अंदर चलो कि मेरे अच्छे संकल्प मेरी सुरक्षा करेंगे, ये छतरी है। और दूसरी छतरी हमारे इतने बड़े परिवार के बीच में सबकी दुआएं मिले, सब बड़े अच्छे बड़े प्यार से कहें ये भाई बड़ा अच्छा, ये बहन बड़ी अच्छी, कभी भी कभी अपसेट नहीं होती, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, कितनी अच्छी दुआएं उसके मुख से निकलती हैं। तो जिस ब्राह्मण आत्मा को संगम युग पर दुआएं मिल रही हैं उसकी स्थिति सबसे अच्छी है। हम सब ध्यान दें इस संगम पर, हम सबको सबकी दुआएं चाहिए। बस बाबा की दुआएं श्रेष्ठ मत पर चलने से मिलती हैं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं समय पर साथ और सहयोग देने से मिलती हैं, हां जी करने से मिलती हैं। तो जितना हम सब ये ध्यान देंगे तो ये छतरी दुआओं की हमारी रक्षा करती रहेगी। कोई भी बात आए, कितने भी बड़े पेपर आए, चाहे शरीर के आए, चाहे संबंधों के आए, चाहे संस्कारों के आ जाएं, चाहे प्रकृति के, चाहे समाज के, चाहे भटकती हुई आत्माओं के, लेकिन अगर हमारे पास सब दुआओं का स्टॉक जमा करके रखते हैं, सबको समय पर मदद की है, साथ दिया है, सहयोग दिया है, बाबा के सदा सपूत और आज्ञाकारी बन करके रहे हैं, श्रीमत में मनमत ऐड नहीं की है, तो मैं समझता हूँ वो दुआएं उनकी रक्षा करती हैं, वो छतरी का काम करती है। और तीसरा सदा ध्यान रखना, बाबा का वरदानी हाथ हमारे मस्तक पर है, बहुत स्नेह से बाबा को, दिल से बाबा को, बाबा को और कुछ नहीं चाहिए, बच्चों के दिल का स्नेह चाहिए, भोलानाथ है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। हम बहुत प्यार से दिल से बाबा के, मतलब से नहीं, स्वार्थ से नहीं, समय पर नहीं, लेकिन सदा ही मेरा बाबा मेरा रक्षक मेरे साथ है, ऐसे कंबाइंड होकर के रहो जो बाबा की छतरी सदा साथ साथ रहे। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, किसी का कुछ बिगड़ नहीं सकता, लेकिन कहीं डर जाते हैं पता नहीं क्या होगा, ब्राह्मण तो बन गए समर्पित भी हो गए फिर क्या होगा, क्वेश्चन करते हैं, वो छतरी भूल जाती। और ये छतरी मजबूत उनकी रहती है जो समय पर आठों तेलियां यूज करते हैं, बहुत मजबूत है शक्तिशाली तेलियां, वो हैं आठ शक्तियां, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है। आज भी बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान उसको कहा जाता जो समय पर वो शक्ति याद आए। मान लो जरूरत है सहन करने की, जरूरत है समाने की, और हम वहां सामना कर रहे हैं, जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है वो शक्ति समय पर इमर्ज हो जाए, और उसके लिए चाहिए साइलेंस की शक्ति। जो जितना साइलेंस की शक्ति का अभ्यास करते हैं, मन को उलझने नहीं देते, बड़ा शांत चित्त स्थिति में रहते हैं, वो शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं समय पर साथ देने के लिए। जरूरत है सहन करने की, सहन कर लेंगे, जरूरत है सामना करने की, जरूरत है सहयोग की, मदद करने की, समाने की, समेटने की, समय पर शक्ति आ जाती है। लेकिन अपने साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, समय पर उस साइलेंस की शक्ति से परख भी सकोगे, निर्णय भी कर सकोगे, जो चाहिए वो कर सकते हो। लेकिन ये समय पर शक्तियां तभी काम करती हैं जब बहुत अच्छी मन की एकाग्रता का अभ्यास करो। हम सब ध्यान दें, मैं पांच छह बातें कहके क्लास पूरा करूंगा, ध्यान देना। संगम युग पर ये समय बड़ा बड़ा बहुत बड़ा कीमती है, एक एक पल इसके बाबा कहता है कई वर्षों के समान है। इसको ऐसे ही नहीं बैठ गए गप सप में, इधर की उधर की बातों में, पर चिंतन में, पर दर्शन में व्यर्थ कर दो, बीत जाएगा फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। जितना समय आप बचा करके बाबा की याद में रहो, अच्छा मनन चिंतन करो, अच्छे विचार चले उनको लिखो पढ़ो कुछ करो, ऐसे ही व्यर्थ की बातों में पर चर्चा पर दर्शन में समय नहीं गवाओ। अगर अपनी अच्छी स्थिति बनानी है तो ध्यान देना, जो आत्माएं समय की कदर रखती हैं उनकी हर कर्म के दर्शन होते हैं, वो दर्शनीय मूर्त बन जाते हैं, मंदिरों के अंदर उनके दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं, हर कर्म के दर्शन होने लगते हैं जिन्होंने समय की वैल्यू की है। और अगर संकल्प की वैल्यू की है, संकल्प पर बड़ा ध्यान दिया है, तो उनके संकल्प वरदानी बन जाते हैं, जो संकल्प करते हैं लोगों को वरदान मिल जाता है। अगर किसी ने अपने बोल को ध्यान दिया है कि बोल मेरा एक भी व्यर्थ न निकले, बोल बड़े अनमोल हैं, अगर हमने अपने बोल को बचा के रखा है, जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। कई तो ऐसे बोलते हैं जो सिर में किसी के दर्द हो जाए, सोचते ही नहीं क्या बोल रहे हैं, बोलते रहते। और बाबा कहते हैं बोल एक बहुत बड़ी शक्ति है, एनर्जी है, और इसको बचाओ। और जो बोल को बचाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, आवश्यक बोल बोलते हैं, वो महान आत्मा बन जाते हैं, उनके महावाक्य होते हैं, वो गिनती किए जा सकते हैं। हम सब ध्यान दें संगम युग पर, बाबा हम सबको महान से महान की नजर से देखता है, हम महान आत्माएं हैं, हमारे एक एक बोल बहुत कीमती हैं, इसलिए जो आया बोल दिया इस पर ध्यान दो, ये बोल अनमोल हैं। और अगर दृष्टि बड़ी शुद्ध और पवित्र, सबके प्रति बहुत शुभ भावना, शुभ चिंतन वाली है, तो आप नजर से निहाल करने की सेवा कर सकते हो। जिसको दृष्टि देंगे उसका भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अपनी दृष्टि पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और अगर अपनी वृत्तियों पर हमारा ध्यान है, हमारी वृत्तियां एकाग्र और स्थिर हैं, चंचल नहीं है, तो वृत्ति से जिस स्थान पर हम बैठेंगे उस स्थान का वायुमंडल बड़ा शक्तिशाली बन जाएगा। उस स्थान पर कोई भी आत्मा के विकारी संकल्प भी समाप्त हो जाएंगे। प्रैक्टिस करके देखो, अगर हम किसी घर में रहते हैं, किसी सेंटर पर रहते हैं, और हमारी वृत्तियां बड़ी उपराम हैं, अनासक्त हैं, निर्दोष हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, तो उस स्थान का वायुमंडल इतना चुंबकीय और शक्तिशाली होगा जो कोई भी आत्मा उस स्थान पर व्यर्थ सोच भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। हमारी दादी जानकी जी कितना अभ्यास करती हैं, कहती हैं कि मैं न सुनती हूँ न सुनाती हूँ, कोई सुनाता है तो मैं सुनती नहीं हूँ व्यर्थ बातें। अपनी वृत्तियों पर इतना ध्यान है, उस स्थान पर आप जाते हैं, दादियों के कमरे में जाते हैं, कैसा वायुमंडल है, सबकी वृत्तियां, सबके अंदर के विचार चेंज हो जाते। तो एक आत्मा अगर कर सकती है तो हम सभी भी इस पर ध्यान दें। जिस स्थान पर हम रहते हैं अपनी वृत्तियों से उस स्थान को इतना चार्ज कर दें, जो उसमें प्रवेश करे उसकी भी वृत्तियां चंचलता समाप्त कर दें। इसलिए मंदिर में जब जाते हैं, बड़ी अच्छी सिस्टम बनी हुई है मंदिरों की, घंटे बाहर रखे होते हैं, और घंटे जब बजाते हैं तो कहते हैं जो आपकी वृत्तियां हैं, जो चंचल वृत्तियां हैं, जो आप विचार गलत लेके आए वहां से कट जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। अब जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपकी वृत्तियां बड़ी शुद्ध हो जाती, पवित्र हो जाती, इसलिए वो घंटा बजाने के सिस्टम है। हम सभी भी अपनी वृत्तियों को ध्यान दें कि कोई भी हमारे स्थान पर प्रवेश करे, किसी भी भावना से आए, कई प्रकार की भावनाएं लोगों की हैं, साकार में भी और सूक्ष्म में भी जो भटक रहे हैं उनकी भी भावनाएं हैं, कई इच्छाएं हैं कई, और उन इच्छाओं के कारण अगर हम भी उसी इच्छा के तरफ मुड़े हुए हैं तो हमारे और उनके विचार एक हो जाएंगे और नुकसान कर देंगे। इसलिए ध्यान देना, अगर हम उनके विचारों से, उनकी इच्छाओं से बचना चाहते हैं, उनके वार से बचना चाहते हैं। मैं किसी को आज कह रहा था, मैं तीन प्रकार के भूत लोगों को परेशान करते हैं, एक भूतकाल, बीती हुई बातें, दूसरा जिसके अंदर कोई भूत प्रवेश हो गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाला, वो परेशान करता है चैतन्य रूप में, और तीसरा जो भटकता हुआ है, जिसको जन्म नहीं मिला, शरीर नहीं मिला, वो बहुत परेशान करता है। और इन तीनों से बचने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा, अपनी वृत्तियों को बहुत स्थिर, एकाग्र, शुद्ध और पवित्र बनाना होगा। जिसकी चंचल वृत्तियां हैं उन पर कोई भी अटैक हो सकता है। हम सब ध्यान दें अपनी वृत्तियों को बहुत अच्छे से अच्छा बनाएं। और वृत्तियां उससे बनती हैं, कैसे बनती हैं, वृत्तियों का निर्माण हमारे संकल्पों की गति से होता है। अगर कोई संकल्प बार बार हम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं मन के अंदर, तो तो वो रिपीट किया हुआ संकल्प जब बार बार चलता है तो उसके आधार से वृत्तियां बन जाती है, इसलिए उसको वृत्ताकार कहते हैं। ऐसे ऐसे घूमता रहता है, एक ही व्रत के अंदर जो बात घूमती है वो वृत्ति बन जाती है। इसलिए हम सब ध्यान दें कि कोई भी बात आती है उसको स्टॉप करो, चिंतन नहीं करो, वर्णन नहीं करो, उसको बड़ा नहीं बनाओ, फुल स्टॉप लगा दो। आपकी वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी और वायुमंडल इतना अच्छा हो जाएगा, वाइब्रेशन शक्तिशाली हो जाएगा, जो उस स्थान पर कोई भी अपवित्र विचार वाली आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। ये हमारी सुरक्षा है। और ऐसे समय पर श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाली आत्माएं इन सब बातों को अंडरलाइन करें, तब मेडल ये मिलेगा और हम अपने आप को खुद ही अपना मेडल दे सकते हैं। कर्म ऐसे करो जो यादगार बने, कोई भी कर्म ऐसा न हो कहते अच्छा है चला गया तो अच्छा हुआ, ऐसे कोई कर्म न हो। हम कर्म ऐसे करें बाबा की याद में रह करके सबको सुख दें, सुख लें। अभी समय नहीं है किसी को अपसेट करने का, किसी भी कर्म से कोई भी आत्मा अपसेट नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, माना कुछ न कुछ अपनी मनमत है। तो बाबा के बच्चे संगम युग पर श्रेष्ठ स्थिति का मेडल खुद को खुद देने का अभ्यास करो। बाबा भी दे देगा लेकिन हम बच्चे खुद ही अपने आप को मेडल दें। और उस मेडल जैसे बाबा कहते ना बैज तुम्हारा मेडल है, संगम युग पर ब्राह्मणों का मेडल क्या है, बैज। ऐसे ही बाबा हम सबको चाहता है कि बच्चे श्रेष्ठ स्थिति का मेडल बना करके हर परिस्थिति में बिल्कुल एक रस, अचल अडोल खुशनुमा प्रसन्न चित, कुछ भी हो रहा है नथिंग न्यू, बेफिकर बासा, वो है अच्छी स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति। तो ऐसी स्थिति बनाने का हम सब लक्ष्य रखें। और बाबा के घर में आप सब आए हो, कल बाबा के अव्यक्त मिलन का दिन है और अभी ड्रामानुसार बाबा अव्यक्त स्थिति वालों से ही मिलता है, साकार स्थिति वालों के सामने नहीं आता। तो आप कल बाबा से कैसे मिलन मनाएंगे, बाबा की भले वीडियो चले लेकिन आप सब अमृत वेले से ही अव्यक्त स्थिति में रह करके, आवाज की दुनिया से पार रह करके अव्यक्त वतन में जाके बाबा से मिलना, सुबह से ही मिलते रहना और रात को अनुभव करेंगे कि बाबा हमारी सभा में हाजिर हो रहा है। तो उसकी अनुभूति आप सवेरे से अंतर्मुखी बन करके कर सकते हैं। ओम शांति। 3 मिनट योग करके फिर जाओ, जल्दी नहीं है कोई भी, सब बैठो साइलेंस।